नाभि संस्कार, मेधा संस्कार. मेधा संस्कार इज डन एट बर्थ व्हेन यू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड. दैट मीन्स इनसाइड द डिलीवरी रूम. सो व्हेन यू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, बिफोर दैट वन हैज टू हैव अ ब्राह्मिन, एंड अ ब्राह्मिन हैज टू मेक अ मिक्सचर ऑफ प्योर हनी एंड प्योर काउज मिल्क, काउज बटर, आई मीन काउज घी. प्योर काउ घी मीन्स मेड इन अ वेरी साइंटिफिक वे. यू हैव टू गेट काउज मिल्क, फर्मेंट इट, मेक इट टू दही, देन चर्न इट, देन मेक इन टू बटर, एंड देन हीट इट टू मेक इन टू घी. दैट काउ घी, नॉट मार्केट घी, यू हैव टू मेक इट योर सेल्फ. दैट काउ घी एंड हनी, प्योर हनी शुड बी मिक्सड अप, एंड मे बी यू कैन पुट इट इन टू सिल्वर बोल और गोल्ड बोल, बट सिल्वर बोल ऑल्सो इज फाइन, प्योर सिल्वर. शुड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट शुड नॉट बी केप्ट इन द फ्रिज. एंड एज एंड वेन योर डिलीवरी कम्स क्लोजर, यू हैव टू प्रिपेयर इट. आई मीन इट कैन बी वन डे टू डे ओल्ड, बट इट शुड बी फ्रेश, इट शुड नॉट बी लाइक ओल्ड वन. इफ इट इज नॉट डे, देन यू कैन परचेज फ्रॉम जन्माष्टमी प्रभु और वाडा, लाइक दैट बोनाफाइड सोर्स, बट शुड बी गुड. एंड देन सम नोन सोर्स ऑफ हनी शुड बी परचेस्ड, अदरवाइज यू विल परचेज सम गुड वाटर आउटसाइड. बट आई हैव एट होम प्योर हनी रेडीमेड, आई गॉट फ्रॉम महाबलेश्वर. वेन यू मेक द मिक्सचर एंड पुट इन द सिल्वर वाटी, देन यू यूज दिस रिंग फिंगर एंड डिप योर फिंगर इन दैट मिक्सचर. And the Brahmin, with this finger dipped in the mixture, should chant whole Bhagavad Gita. Or time is less, then he should chant 9th chapter of Bhagavad Gita. Or time is little more than 9th and 12th and 15th chapter of. But the whole Bhagavad Gita is good. He should take bath, put tilaks, do Gayatri, and then sit on the asana on the ground, on the Kusha asana, and then chant. Very with full concentration and devotion and love, and keep that mixture in the fridge and wait for the delivery to take place. When the delivery takes place, Brahmin should be available there at that time who has done this business, and then there should be a gold, either gold ring or also gold biscuit, whatever you have, pure gold should be there, and that pure gold should be dipped in this mixture. And that mixture should be touched at the tip of the tongue of the child. And a mantra should be chanted. One mantra is there, that should be chanted. This whole thing is called Medha Sanskar. And this Medha Sanskar is done to give spiritual intelligence to the child. This is the intelligence which helps you to discriminate between body and soul, and matter and spirit, material and spiritual.
Huh,
when as early as possible.
As early. Okay, that means you have a month span over there for doing.
Well, you can also say 45 days, you can also say 60 days, but you know.
No, but earlier
as his child is born, it is better. If it is born, maybe suppose if my baby was born and then I was there, I did all this preparation, everything, I was fully ready with dhoti, kurta, chadar, everything, as a Brahmin, as also as a father. But when I went there, I saw that she was different. She had a lot of problems. She had a big swelling of blood on that, and a big different head and one head, and two, I said two heads like that. So immediately she was rushed to NICU. But somehow I did the sanskar to her. But sometimes it may not be possible because people will be so upset that child didn't cry. So you have to rush the child to NICU. So you don't have 2 minutes also to do the sanskar. Because it was my child, I could do it immediately. और सपोज हमारे ऐसे चाइल्ड इज देन, ऐसे नहीं प्रभु जी वो रहने दो, अभी बच्चा जब भी जिंदा रहेगा तो अच्छा है, बाद में हम लोग कर सकते हैं उसको. इन दैट केस द बेबी विल गो टू एनआईसीयू, एंड देन व्हेन बेबी सेटल्स डाउन, देन यू थिंक ओके नाउ थिंग्स ब्राह्मिन को कैन बी, वी कैन कॉल द ब्राह्मिन. हाँ, अर्ली एज द पॉसिबल. हाँ, if you give it, give this to child before the child drinks milk of the mother, is best.
That is best.
But at one point of time we stopped this in the hospital. Because the honey has some spores of botulism. So then who will take the responsibility? But still, there are, I told some mothers, ki dekho, aisa sa hai. Nahi, kuch nahi, kuch nahi, don't worry about it, do it. So I did it. And parents should be taking responsibility. If tomorrow they get botulism, they should not blame the Brahmin, ki, like that. So it's a matter of conviction in the faith, No, cut karne ke baad. Cut karta na, samjha ta Brahman ta nora sa ta goshta vegli hai. If he is not your husband, then how can he come in? So best way, the placenta comes out and everything is finished and baby is clean, you are clean, everything fine, and then it can be done. How I did it for Balram? And that time only it stopped. That is the time. I mean, I did it. There was Madhavan Prabhu's question for that. So then I
actually,
said, okay.
2 hours later, he came for the round. That time,
Madhavan
was licking his lips. So he made
a
mistake.
Why is
he
licking his lips?
He asked, Madhavan, that's a problem. Even Arushya Siddha Mahat sat over the hotel, but. सभी प्रोसीजर नो थी जस्ट एक म्हणजे सोन्याच्या अंगठीनी मध साठवून ओम लिहिलं होतं एवढंच केलं.
हा या वन मोर वाय आय फॉरगॉट, यू हॅव टू इमॅजिन दॅट यू आर रायटिंग ओम ऑन द टंग. आय हॅव टू इमॅजिन व्हाईल आय एम व्हाईल बिफोर आय चॅन्ट द मंत्र, आय हॅव टू इमॅजिन दॅट आय एम रायटिंग ओम ऑन द टंग, टिप ऑफ द टंग. And plus, when people don't know the meaning behind it, it reduces to that touching only that item to that tongue. Purpose rahe ke waju mein, khali touch karne ka bas. There's a whole consciousness is very important. Why are you doing it? The purpose is to give spiritual intelligence. Bhagavad Gita paise thamade. Nowadays, whenever the babies are taking birth, somehow or other, either mother is in distress or child is in distress or kuch na kuch to chalte rehta hai. Matlab, I'm watching here that deliveries are nowadays, as Kali Yuga is advancing, nothing is so simple. Eventful rehta hai wo hamesha. Some event is always there. Nothing clean, forward, normal delivery, ghar pe gaya, aisa. Something is happening. So, but kya karenge abhi, it's a part of life. We have to do it accordingly.
Last Sunday,
if you have a source of pure ghee, which could be at home, I mean, I'm not saying you should. It's a must that you freshly prepare it. I'm not saying that. But if it is reasonably fresh and not spoiled and kept ready, good source is there, it's also okay. I mean, we don't want to be that fanatic. If we have to make it tomorrow, then how will it be? We will chant it.
Still, Prabhuji,
it
should be fresh, you are saying. So, that can be 2 days back?
Well, ghee is kept for a long time, that way. It should not be spoiled. And it should be bona fide ghee. It should not be, doubtful ghee or made out of cream or made out of bulls, whatever. I mean, buffalo, whatever. It should not be like that. Most important is it should be pure cow ghee. As far as possible, latest.
Latest,
not old. Honey anyway is old only. Honey you can't just say, Atas Radle honey, Asa Krishna. Honey will be there only. So, but important is chanting Hare Krishna. Important is chanting, purpose, consciousness is more important. So, Brajeshwari delivered at 9:32, but I chanted the whole thing in the morning only. And whole day we were just waiting. We didn't know when.
Huh. No,
no.
3 hours maximum.
No, not necessary.
Two hours
is also fine.
Fast recitation.
2 hours also is enough. But remember, I did it very peacefully and very nicely, elaborately. No hurry. So it's all up to you, what you want. And in case, suppose, it is strictly prohibited here, then we can do it at home. For that you will deliver normally. You cannot afford to undergo cesarean. Then you will be here only. All of you should determine that we will deliver normally only. Mind is very strong. If mind is fearful and hesitant. However, anything you do, you will not deliver normally. Mind should be decided that no, normally hona hai.
Actually, at the time of Arush, my first baby, I was so determined, no, normal. During the last month, each week I used to go to my doctor, I used to visit him. I used to ask him, it will be normal. Look, I also know that he won't be able to tell me that it was my determination. I was putting him under pressure, like it should be normal.
But you deliver normally, no?
No.
For that, walking is important. And I suggest all of you that don't think that you will walk in last month. You have to walk from first month only. So you can, the increasing weight, you can get proper training to bear that weight. Afterwards, if you start walking afresh at 7th month, you will say ki bahut heavy ho gaya, abhi paon dukh rahe, ye dukh rahe, wo dukh rahe. Every day from day 1, so when the baby is gaining 100 grams, 150 grams, 200 grams, then you are okay to gradually train yourself with increasing weight. But if you are lazy, then you will definitely have difficulty in the end.
More flexible the muscles are
definitely
easy to
deliver normally. And that walking really helps you. And some asanas are there. If you go to Kranti Mali, she'll teach you some asanas also. Then last time we talked about all this thing. What new questions you have got this time? Because you have one child at home now already.
One child is at home.
Whom you are taking care.
Workload is increased. Everything is there.
Ultimately, when time is less, what is more important is quality of the consciousness. We may not spend 2 hours talking to the child, but ultimately if your consciousness is properly cultivated by you, by chanting and routine sadhana. Because ultimately suppose luxury is not there that you are housewife and you are sitting at home and you don't have, it's a first child and you don't have child to look after, then that is the ideal situation, the first time. But as and when time comes, whatever time is there, whenever you get time, then you do quality work.
I feel some insecurity, like the bond which I have developed with Balram, whether I am...
No. You will develop. See, ultimately, don't think that everything is external. Nothing is external. External things are important, but when there is no much time for external rituals, what matters is consciousness. The bond is not developed only because of external rituals. The bond is mainly because of consciousness coupled up with your rituals externally. Suppose my mother has not done for me that sanskar, medha sanskar. That doesn't mean that I will never get intelligence spiritually. I will get it by association of devotees. But here you have a fortune that you will have a satsang of devotees for your child. At the same time, you have this opportunity also. So, additional thing you are doing.
As you told during those periods also, we had a similar meeting that you told, whatever you are going to tell to the child, now I see whether I am reciprocating. So, this time I am feeling I have not given that much time to this.
You have, whatever, now you are not working, na? Stop now. Now it is enough. So now last 10 days you give your full time to child. Do your best. Ultimately, the result will depend upon how best you are trying to do what is best to do. How best you are trying. All time you may not be the ideal but best, but it should be your best and how sincerely you are trying 100% to do whatever is possible best, you do it and then result will come. Chanting, how much you are doing?
Chanting, I do just 5 months.
Do it more. How many months pregnant you are now?
7 months.
You are not working, na? Then why you chant only 5 rounds?
No, it's not that.
You have a luxury of not being employed or working. So you are tentatively having more time than others. So chant more because it's the greatest gift you can give to your child. It's the holy name.
As such, I don't with beads, I chant 5 rounds. But otherwise, continuously, in my mind, it is going on.
But still, there are chanting is of three types. One is Vaikhari, that is by loudly by mouth. Second is Upamsha. Upamsha is soft, meditative chanting, soft.
Like just...
No. Uh-huh. It's still uttering the word.
Uh-huh, uttering the word.
But soft, slowly. Soft. And third is Manasik.
That one I do the most.
No, but unless you are practiced to chant many, many hours a day, you are not successful to Manasik down chanting successfully. So what I am telling you, my simple line I am saying is, when you are trained to chant many, many hours a day, that means 2, 4, 6, 8 hours a day you chant, that means 16, 32, 48 and 64 rounds you have habituated to chanting, then your mind starts getting tuned into chanting and naturally mind will be chanting. At the back of the your consciousness, mind is chanting like some sound is going on, like, you know. Background music is going on like this.
Yeah, I understand, but that is what happens with me. Like, वो होता है भी करते थे. कारण मुझे आता ची हो शरीर में chanting हर मुझे हरे कृष्णा है महामंत्र शरीर में आता शरीर मनाला सुरक्षित के लिए असल तरी कृष्णा से नाओ है मी किसी तरी वर्षान पसुन अशीष गेती.
हाँ.
तो सतत माजा मुझे मी धावती तसले पसुन मी ती गोष्ट करते थे.
आपन पाच आपण 16 माळा करतो ना ते यू नो व्हाय वी डू इट बिकॉज वी वॉन्ट टू ट्रेन अवर माइंड फॉर रेग्युलेशन दॅट्स व्हाय वी डू इट ऑल दो आय विल चॅन्ट होल डे बट टू ट्रेन माय माइंड फॉर अ रूल आय विल चॅन्ट 16 राऊंड्स एव्हरी डे सो माइंड इज व्हेरी ट्रिकिंग नो व्हेरी फ्लिकरिंग अँड व्हेरी ट्रिकी सो फॉर द माइंड सेक यू हॅव टू बोलतो ना की 12 वाजले बसा जेवायला चला 12 o'clock टाईम फॉर इटिंग देर इज अ रेग्युलेशन फॉर द माइंड ओके गेट अप इन द मॉर्निंग गो टू टॉयलेट टेक बाथ इट्स अ रेग्युलेशन फॉर द माइंड अदरवाइज यू कॅन टेक बाथ इव्हनिंग ऑल्सो बट यू हॅज अ रेग्युलेशन ना हां सो लाईक दॅट माइंड ऑल्सो इज लाईक नॉट लाईक दॅट माइंड ऑल्सो नीड्स अ पर्टिक्युलर ट्रेनिंग दॅट्स वाय वी चॅन्ट लाईक दिस अँड देन वॉट एव्हर पॉसिबल मोर वी डू and then we can do at a mind level also. Yes. Now I am chanting in the mind, but I will not know when my mind went to Ahmedabad. I will not know only at what point of time, 3 o'clock to 3 o'clock in 21 minutes in 13 seconds my mind left. You never will know only at 4 o'clock you will realize you are in Ahmedabad. It should go on at like this in background. In front your work should go on. That's a very high stage. Aur bataiye.
This is a child in the home. We can decide or whatever we want to train. Once it comes out, that time
you can play. If you are busy looking after the child, cleaning, breastfeeding, whole night, day and day, so you put a speaker like this. Let that recite. Suppose you are now bathing the child, or you are breastfeeding the child, or you are cleaning the child. This can go on.
And how much is the impact of the associating people, the family members, and when the child is still in the womb? How much is it?
Whatever you give, the child takes.
Other family members, not only mother and father.
Whatever, wherever and whatever happens, child is taking. That's why we don't subject a child to the situation like that. That's why if you are really keen on these things, you should not attend any material functions. किसी का वही चाची के लड़के का शादी है, उसी के लड़के का engagement है, उसका कोई और कुछ गृह प्रवेश है. Don't go in the gatherings where many people who are not devotees are going to gather. So the collective consciousness affects the child. That's why a pregnant lady has to be protected well by the husband, so that she remains in the happy atmosphere, number one. Away from unpleasant situation, like, you know, so don't get along with your sister-in-law, or don't get along with this person and that person. You're not with that person most of the times. Whenever you are away from this negative influence, you are in positive influence at that time. You are in happy condition. All these things you have to be taken care of. Yes, yes, yes. If you read Krishna conscious books even without uttering, you are just reading, they are also going to go to child.
Because this time it is not practically possible. That time I used to recite loudly also. But now I feel tired.
Whatever consciousness you have as a mother, it is directly going to the child. Whatever you are gaining and whatever you are today, suppose you have advanced from X stage to Y stage, from first time to second time now, suppose, or you have degraded yourself, whatever you are now, resultant consciousness is going to affect the child consciousness.
Basically, whatever or however the mother's consciousness is
directly affecting the child.
In whatever stage, yeah, whatever situation,
will affect.
Will be the consciousness of the child.
At that time. And suppose first time you were happier, and you are stable in your family life, everything was fine. And second time things are unstable, husband's income has reduced, or things change in life. Yes. Financially they change, or relationship also changes.
Overall, everything changes.
So what I'm saying is, in the given changing situation, you have to try your best. You try your best in given conditions. You cannot say that time I could do this, that, but things have changed, na? What is most important is your effort. Your effort to try your best in given situations. It's another experience, na? नहीं फिर भी हम लोग को कुछ देना ना उसको वो तो अपनी पूंजी लेके आ ही रहा है ना. See, Prabhupada was born in Gaur Mohan Day's family, right? He had his own spiritual wealth he brought with him. But still his father was waking up in the morning and doing Mangal Arati na for him. So father is doing his duty. Father apni duty kar rahe hain. Mata pita apni duty kar rahe hain. Mera jo kaam hai wo mujhe karna hi karna hai. Mera child shayad Bhagwan ka avatar ho shayad mere womb mein. Who knows? Some demigod, anything may be there. But still, I will do my duty. I will not say ke wo to mera ghar mein already ek devotee paida ho gaya, husband devotee, my devotee, mother-in-law devotee, so I don't want to do much. Anyway, things are going on well. Aisa nahi hai. You are still trying to do your best in the given situations. What to speak of in the womb? Abhi Varsha Bhanu is now 12 and a half year old. Today also we don't take her to any material functions, any marriage functions. We don't take her because she gets disturbed, and we can see that immediately she gets disturbed. So by rule, we go to marriages, we keep her in some house nearby the marriage hall, we go and we come back. But we don't expose her to the marriage atmosphere. Because even if it is devotee marriage, there's a lot of disturbance, a lot of gossip and this, that, chalte rehta hai. So however it is devotional marriage, still it affects. Still it affects. Because there are some outside relative, friends, there, everything is... So we don't take. So same thing for you also. Child is in womb, child is outside the womb. Result rule is same.
What it is inside, it is outside.
No. When the child is in the womb and the child is delivered after this is out of the womb, the rule remains same. Don't expose to atmosphere which are disturbing.
Disturbing atmosphere.
That means fights are going on at home. One should not be exposed to that. Or some uncertainty, some disaster, something which is unpleasant happening. For example, suppose some bomb blast occurs in Kulaba, suppose. Then don't open the internet and start watching. Don't read the news and don't go in detail. Kya hua, aisa hua, aisa hua. Don't dwell in that. Tachyavarati asa vichar karun naka. Kai challe, kai challe, kai challe, kai challe. So because it will again start revolving in your mind and mind will get disturbed. Anxiety will come, fear will come, fear will come, ghastliness will come, you know, vibhatsa. Naiga? So paper aap padho hi mat, best way. Don't read papers. Don't read newspaper. Because newspaper is all disturbing. Either here hua, udhar wo hua, aisa. No good news is there. Never. Food also.
Such desires I
never experienced during
both the pregnancies.
I never had any such type of desire. Again, that's fine. So, this is said, like, child's karma or child's interest. By the grace of God, most of them, they are devotees who take birth in the womb of devotee parents. So unless they are very passionate kind of devotees, then you'll have a variety of desires. But if they are simple town devotees, then you'll not have a passionate desire. I want to eat lasagna or I want to eat something chatpata. It is there.
I don't feel
it. It's not a must. It happens only for every mother, isn't it? Even my wife also never expressed any desire that she wants to eat this, she wants to eat that. What I would do for her, that she didn't expect that I want to eat this, I want to eat that, something specific, she was not demanding. So I would do anyway, generally what she loves, I would do that. Generally what she used to like to eat, I will arrange that way. So.
Don't
do that. That's right. This is all bread, beads of. It spoils the health like anything. And then whatever you eat now, that taste remains in child afterwards. Child will anchor for that. And so then it's a cycle. Then you like it and child like it. Then you like it and child like it. Then finally, you will justify it in the name of Dohale and you will eat it.
Then
you tell honestly, nahi ho raha hai dil mein ko khane ka. Don't succumb to their desires. You look what you want. Don't get impressed by their influence. Kaisa na, we should be we, not who are bundled up by others. Log prem ke bahane bhi aapko puchhenge, ye karunga, wo karunga. But you should be very clear what you want. You should be very, very clear what you want and what you want to do. And never succumb to people's pressure. वो कितना बोलते हैं यहाँ पर आ जाओ उधर आ जाओ क्या रे क्या वाशरबाड़ी को संभाल लेंगे क्या हम लोग देख लेंगे उसको अरे but we don't succumb to that. We will do what we are convinced of, what our experience tells us. We will not get waved off with people's pressure and this and that. People will never understand what your condition is. You only will know. And you be honest and firm what you want to do. Don't hurt them, but be very firm and clear. What do you want to do? Let everybody eat pav bhaji for their pleasure, but you eat what you are supposed to eat. Suppose kuch function rakha hai aur bhi convenience sake you are pregnant, you are busy, to wo pav bhaji easy hai, to kisi se mangwa ke banwa liya usne. Sab log program mein pav bhaji kha rahe hain. But you eat your food afterwards. You serve everybody and you eat what is supposed to be eaten by you. Simple. हाँ बोला मत purpose of calling them is what?
Just a meeting.
हाँ Then you do one thing, to simplest and easiest way to avoid this kind of conflict. You accept what's going on, then you do your spiritual activities a little more, compensate. Instead of getting into the argument and then another chapter will start there. Instead of that, just what is happening is just okay, fine. Don't take it so seriously. Let it go on for some time and afterwards you compensate it with more chanting, more reading, something more you do when you are alone. Every day is not, they are not coming, na? They will not come every day, right? Principle is that
the
principle is don't create disturbance.
Ah, that is what. Emotionally and spiritually,
disturbance you should not create. Yes, Madhuri, bully. I think you talk basically stress on basic qualities more. Basic quality is something which is like the child should be truthful, the child should be humble, the child should be devoted to God. He may not be Prime Minister of India, but he should be honest at least. He should be sincere, honest, responsible, truthful. These are basic things, na? You talk about basic things. Basic. Talk basic more. If he's a best speaker, that is something which is desirable. But amongst the things, there are three types of things. One is vital. One is essential. One is desirable. चाइल्ड अगर अच्छा सिंगर बना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना तो भी वो सच्चाई के भी चलने वाला आदमी होना चाहिए. लेकिन आई बी हैप्पी दैट माई चाइल्ड बिकम्स द बेस्ट सिंगर, बट सपोज डजंट बिकम बेस्ट सिंगर, नथिंग गोज रॉन्ग एज लॉन्ग एज इज ऑन पाथ ऑफ ट्रूथ. सो दैट इज बेसिक. सो दैट इज बिकमिंग ग्रेट सिंगर इज अ डिजायरेबल थिंग. But it's something called as vital, that you just cannot not have. You have to have. Those things you talk first. So you when you make a list, na, you only make three categories. One is vital, second is essential, and third is desirable. Chalil, narkat nahi. But I would still say Siddha Pradna is high quality. Being truthful is vital. Helpful, humble,
selfish,
But all people cannot be trained like that, na? Suppose tomorrow, today you want to, today now, at this age, you want to train yourself to be Vishakha Mataji. Can you become Vishakha Mataji? No. So, some things are trait-wise, some things are traits, which are, people are born with that trait. Leadership, you know, guiding people, influencing people, everybody can't do that. So that is something called as a superlative degree. It's like, you be SSC first, then you do 12th. PhD is desirable, but it's not a must that you have to do. So, everybody cannot become Radhanath Swami. But we can take some qualities from him. And somebody becomes Radhanath Swami is very good. But even if he doesn't become Radhanath Swami, some qualities he must have as a devotee. So those you figure out what you think are most important. And rest are desirable. But you can keep talking about it. You be like Radhanath Swami, you be like Prabhupada, how he was compassionate, how he sacrificed. You can talk. Why not? But don't, even for the child also, na, suppose I tell you, you be like Radhanath Swami. But then you will say, how? So then you have to say, see how compassionate he is. So you have to be specific. Even when I tell you, you want to know clear idea. Na? So like that, even child want to know. Child want, how child will be confused. How? I don't even know Radhanath Swami. How will I become like him? So you have to talk, analyze your word and then be specific. Okay, this is what I am impressed with Radhanath Swami. This quality of his is most important, I feel, for you. So that you talk.
Simple words, simple text.
And basics. What all of you are reading nowadays? Okay, good. Reading? Recitation. What are you reading?
Actually, I could not focus on reading till now because of the nausea. I'm thinking about reading that condensed volume. Whole Bhagavatam is not possible now.
That condensed volume is good. That you can finish reading. Stories will be always good. Spoken. Yes. It's perfectly okay. No problem. You are reading? Okay, good. I think hearing will be always easier if you don't have time to read.
Because we are not sit properly, we have to sleep and then read.
Ah, or side me. So. So what story you want to hear from me today? I'll tell you one story if you want. Whichever.
Sita's questions.
Sita.
I missed that day.
Which one?
Any Sita's questions.
Which, when you missed?
We decided for reading that I was
not. Sita. There were three ladies who were called as Mahasatis. So these three ladies one time committed an offense to four Kumaras, I think. Four Kumaras were there in Vaikunth, and three Mahasatis came there, and they didn't offer Dandavat Pranam to four Kumaras. So the four Kumaras cursed them that you will take birth in the material world. So they were like surprised, actually, what big thing we did. Then they came to this, these four Kumaras are not babies, you know, they are Maharishis. They are very, very old rishis actually, but they are in 4-year-old form. So when this curse was uttered, immediately Vishnu appeared there. And he told that this is not a curse actually. This is a blessing upon you. You may think I have to go to material world and take birth in the material world. But Hindi mata Hindi, I'll tell you Hindi. तो उनको लगा कि ये शाप दिया गया हमको. तो उन्होंने कहा शाप नहीं है, ये वरदान है आपके ऊपर. आपको लगता है कि हमको शरीर धारण करके दुनिया में जाना होगा, मृत्यु लोक में जाना होगा, तो शाप नहीं है. आप 3 महासतियों को जन्म देने वाले हो, इसलिए आपको नीचे जाना होगा. उनका पृथ्वी पर अवतरण होना आवश्यक है. सो एक बनी हिमालय की पत्नी मेनका, एक बनी सुनैना हु इज़ द वाइफ ऑफ जनक महाराज, और एक बनी सुचंद्र एंड कलावती. ओके, सो वन बिकेम कलावती, मदर्स नेम वॉज नैना. वन बिकेम पार्वती, उस मदर नेम वॉज सुनैना, नहीं मेनका. एंड अदर वन वॉज जनक राजाज वाइफ सुनैना. सो दस पार्वती, सीता एंड राधा रानी वॉज बॉर्न. ओके, दिस इज देयर हिस्ट्री. सो दोज 3 लेडीज वर द मदर्स ऑफ दिस 3 लेडीज. दे बिकेम मदर ऑफ सीता, मदर ऑफ पार्वती, मदर ऑफ राधा रानी. एंड राधा रानी का स्टोरी ऐसा है कि दैट लेडी हु वॉज कलावती, कलावती वॉज बॉर्न आउट ऑफ नैना. सो कलावती एंड सुचंद्र वॉज मैरिड टू सुचंद्र, एंड देन सुचंद्र एंड कलावती डिड तपस्या फॉर 1200 ईयर्स, एंड देन दे गेव बर्थ. दैट कलावती बिकेम कीर्तिदा इन नेक्स्ट लाइफ, एंड कीर्तिदा गेव बर्थ टू राधा रानी. ऐसा ये स्टोरी है उसका. तो वेन सीता देवी वॉज बॉर्न, ना she was not born of course, she was found in Sita. That means Sita, Sita is the groove on the ground. Jaminivarti is the foot, jo chhed hai na, chhed, wo chhed mein Janak Maharaj yagya karne ke liye nangar chala rahe the, to usme unko mili golden baby, the effulgent. To usme Brahma ji ne unko bataya ki ye aapki kanya hai, aisa aisa uska background hai. To wo Sita Devi na, सीता देवी के जन्म होने के पहले से ही शिव धनुष की प्राप्ति जनक महाराज को हुई थी. उसका एक लंबा इतिहास है कि वो शिव धनुष जो है वो कैसे उनके पास आया. क्योंकि तो जनक महाराज के जो थे ना, जनक एक्चुअली ये पदवी है, जनक ये उस व्यक्ति का नाम नहीं है. ऐसे सबको जनक नाम था उनके राजा में, पोस्ट था, पोस्ट. तो एक जनक थे, 17 पीढ़ी पहले थे वो. 17 पीढ़ी पहले उन्होंने बहुत पराक्रम किया, देवताओं का सहायता किया था. तो शिवजी ने उनको बख्शिश में अपना धनुष दिया. तो 17 पीढ़ी में वो धनुष चलता आया, और ये जो एक्चुअल सीता के पिताजी थे उनके पास भी वो चलता आया वारस के रूप में. तो वो एक बड़े महल में रखा गया था, बड़े महल में उसके लिए पूरा म्यूजियम बनाया गया था, ह्यूज. वो मणि कंचन सोने से बना हुआ था, बहुत सुंदर. तो उसको 300 पहलवान लगते थे हिलाने के लिए, क्योंकि साल में एक बार उसका उत्सव करते थे वो लोग, पूछते थे उसको. तो 300 आदमी लोग लगते थे उसको चलाने के लिए. खैर कोई बात नहीं. तो वो धनुष जो है वो एक बार मेरे ख्याल से परशुराम जी लेकर आए थे, और उन्होंने उसको एक जगह रखा ऐसे, और वो जनक महाराज को मिलने के लिए चले गए अंदर, छत के जगह पर रखा है. तो इफ आई एम नॉट करेक्टली मी रिमेम्बरिंग, बट वो चले गए रखे उसको. सर आपने अपना साइकिल पार्क किया और चले गए अंदर, या बैग रखा हो चले गए अंदर, वैसे धनुष रखा हो चले गए अंदर. तो जब लौट के आए तो धनुष वहाँ पर नहीं था. तो बोले धनुष किधर गया? तो देख रहे तो सीता जो है ना वो धनुष का खेल रही थी, जैसे कोई बच्चा गेंद खेलता है, कोई खिलौने से खेलता है, वैसे वो उसको उठा रही है, उसको हवा में उड़ा रही है, उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ रही है, राइट हैंड में पकड़ रही है, उसको ऐसा घुमा रही है, वैसे घुमा रही है. तो फिर जनक राजा और परशुराम जी के बहुत आश्चर्य हो गया उनको, बाप रे इतनी शक्ति है इस लड़के के अंदर. तो तभी उन्होंने वो तय किया कि इसको ऐसा ही पति मिलना चाहिए जो इसको उठा सके और उसमें प्रसन्न चढ़ा सके और उसको खींच सके. वहाँ तय हुआ वो कि अगर ये लड़की इतनी शक्तिमान है तो उसका हस्बैंड तो उससे स्ट्रांग होना चाहिए। तभी उन्होंने वो प्रण रखा कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उस बाण आरूढ़ करके उसको ट्वैंग करेगा वो उसका पति होगा। तो सीता जी को उसका पता नहीं था ऐसा क्यों किया हुआ। बाय द वे जब वो बड़ी हो गई तभी बहुत वीर आते थे उसको जीतने के लिए क्योंकि बहुत सुंदर थी वो, तो सबसे बड़े बड़े वीर आते थे वो जो आपको आपने अपने आप को बहुत बड़े वीर समझते थे, ऐसे नहीं ऑर्डिनरी कोई, जो रियली बड़े वीर थे और वो बड़े माने में जाते थे ऐसे वीर आते थे और वो उठा नहीं पाते थे। फिर रावण भी एक था उसके अंदर, बहुत सारे लोग थे बड़े बड़े लोग, और किसकी याद नहीं आ रही है, लेकिन रावण फिर जरूर था। तो ऐसा समय आया कि कई सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों लोग हाथ भी लगा नहीं पाए उसको। तो उस समय सब लोगों को, अभी समझो मैं अभी हार गया और आप भी हार गए और आप मुझे मिले तो आप डिस्कस करेंगे ना क्या हुआ ऐसे हुआ, तो फिर आपको गुस्सा आएगा मुझे भी गुस्सा आएगा, फिर मैं इनको मिला फिर उनको भी उठा नहीं पाए, ऐसे बहुत लोग इकट्ठा हो गए। तो उनको मालूम पड़ा कि अरे हमारे साथ कहीं मजाक तो नहीं किया जा रहा है, कि जो बात नामुमकिन है वो केवल हमारी हंसी उड़ाने के लिए तो की नहीं गई है। उनको लगा नहीं ऐसे ही किया होगा, जनक राजा हमारा मजाक उड़ाते होंगे, जो इम्पॉसिबल है वो चीज़ जानबूझ के रखी गई हमको हमारा मजाक उड़ाने के लिए। तो सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने अयोध्या पर हमला, सॉरी जनकपुरी पर हमला बोल दिया। ऐसे कहते हैं कि एक साल, क्या कितने साल, एक साल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक जनकपुरी में केवल युद्ध ही चलता रहा। जनक राजा बहुत परेशान हो गए, तो बहुत कष्ट के बाद में फिर वो युद्ध को समाप्त किया गया बड़े प्रयास के साथ में, क्योंकि वो लोग इतने अपमानित हो गए थे कि अरे इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया हमारे साथ। फिर बाद में विश्वामित्र आए दशरथ के पास और राम और लक्ष्मण को राक्षसों को मारने के बहाने लेके गए। फिर राम ने पहले ताड़का का वध किया, फिर सुबाहु का वध किया, फिर मारीच को धनुष बाण मारा, बाण से मारा तो वो 100 योजन समुद्र में जा गिरा। फिर वो उनको लेके गए और जब गंगा जी से गंगा जी पार कर रहे थे तो उन्होंने पूरा गंगा जी का कथा उनको बताया, गंगा जी कैसे अवतरित हुई, भागीरथ कौन था, अंशुमान कौन था, सगर कौन था, अंशुमान दिलीप सबका वर्णन किया। फिर वो सरयू नदी जब पार की उन्होंने तो उसके बाद में वो मिथिला पहुँचे। मिथिला में मैं अभी भी अप्रैल में जाके आया, इतनी मेरी ऐसी तमन्ना थी कि कभी जाऊँगा। ये भूकंप के पहले की बात है, भूकंप तो भूकंप मैं जब लौट के आया तो थर्ड डे भूकंप आया तो फोर्थ डे वापस चला गया मैं, एक ही बार नहीं गया, दो बार गया मैं, एक बार 15 दिन था, दूसरे दिन 7 दिन था, एक ही महीने में। थर्ड डे जब मैं आया तो भूकंप आया यहाँ पर, फोर्थ डे में चला गया। तो जो फर्स्ट टाइम गया था मैं तब सब कुछ नॉर्मल था, तब मिथिला में गया था। उधर ना सीता जी के 50 कुंड थे, इतिहास में भी लिखा है कि सीता जी के खुद के बनाए हुए 50 कुंड थे, इतने विशाल जलाशय वो बहुत सुंदर। तो मैंने उस स्थान को विजिट किया जहाँ पर सीता देवी और रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ, और एक जगह में जा नहीं पाया जो जहाँ पर जो बगीचा है उसको क्या कहते हैं, उसको कोई नाम है उसका जगह का, जहाँ पर सीता जी जब फूल बिनने गए थे तब राम का दर्शन पहले उनको हुआ था वहाँ पर। उसके बाद स्वयंवर का जो स्थान है वो उनके जन्मस्थान के पास में ही है, जन्मस्थान वहाँ है जहाँ पर जनकपुरी जनक राजा का दरबार है, जिसको भूकंप में बहुत क्षति हो गई थोड़ी उसकी, तो भगवान की दया से मैंने उसका पूरा दर्शन किया जो इंटैक्ट मंदिर का। और उसी मंदिर में सीता देवी द्वारा पूजित 350 शालिग्राम की शिला भी है, 350, और उसमें एक यूनिक शिला ऐसी है सीता देवी की जो ब्रह्म शिला कहते हैं उसको, ब्रह्म शालिग्राम शिला, वो दुनिया भर में किधर भी नहीं है, वो एक ही जगह पर द ओनली वन, बस वो है चमत्कार उनका, उनके पास ही है वो। अभी एक ब्राह्मण उसकी सेवा करता है और शालिग्राम शिला है सीता देवी की। फिर मिलने का, फिर जनक और उनकी वाइफ का एक मंदिर है, फिर दशरथ का भी एक मंदिर है, फिर एक परशुराम का मंदिर है, फिर एक उधर दो कुंड है, एक धनुष कुंड है और एक शायद राम, नहीं धनुष कुंड और परशु, दो कुंड है मुझे याद है। तो एक कुंड जो है वो ऐसा कहा कि जब राम ने धनुष तोड़ा तो उसके वजह से वो वहाँ पर कुंड तैयार हो गया, बहुत विशाल है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, राधा कुंड और श्याम कुंड के चार गुना बड़ा होगा वो, इतना बड़ा है, बहुत विशाल है वो, और दो है ऐसे उसके बीच में कनेक्शन है, मिथिला मदे, वेरी नाइस प्लेस। तदनंतर आफ्टर 14 किलोमीटर्स वी गो अहेड, दिस इज अ प्लेस वेयर परशुराम जी केम आफ्टर द वेडिंग गॉट ओवर। पता है ना कहानी आपको क्या है, जब विवाह हुआ तो विवाह होने के पहले जब प्रभु रामचंद्र ने विश्वामित्र की दया से कृपा से धनुष को उठाया, ऐसे कहा है कि जितने भी वीर आए एक ने भी धनुष को प्रणाम नहीं किया, सीधा उठाने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु रामचंद्र पहले थे जिन्होंने पहले विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया, उनके चरण छुए, फिर आके धनुष को चरण छुए, धनुष को वंदन किया और प्रदक्षिणा किया उसका, ये समझते हुए कि शिव जी का धनुष है, ऐसा नहीं कि मैं कोई भारी वस्तु उठाने जा रहा हूँ, नहीं मैं शिव जी का धनुष उठाने जा रहा हूँ, इट्स ऑल्सो हैवी बट वो शिव जी का धनुष है, ये समझ के उन्होंने उनको प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया और फिर उसको उठाया, और फिर जो भी हुआ आप जानते हैं, उसकी आवाज़ से टनत्कार से क्या हुआ, वो महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए परशुराम का ध्यान भंग हो गया, इतना भयंकर ध्वनि हो गया, उसका वर्णन दिया रामायण में कि वो ध्वनि जो है वो पृथ्वी के सारे कवचों को तोड़कर सारे स्वर्गलोक में गया, ब्रह्मालोक तक गया, ब्रह्मालोक के बाद में ब्रह्मांड का कवच पार करके महाविष्णु के पास गया, वहाँ से वैकुंठ गया, तो बाय द वे पृथ्वी पर भी गया, तो वहाँ पर महेंद्र पर्वत पर जो सब राक्षसों का संहार करने के बाद में शांत बैठे हुए थे उनका ध्यान भंग हो गया, तो वो तो भगवान के अवतार है, वो समझ गए कि ये तो शिव जी का धनुष तोड़ने का साहस किसने किया है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया, तो सीधे वहाँ से वो चल पड़े आवाज़ की ओर। तब तक इनकी, अच्छा तब तक क्या हुआ था, देखो जब यहाँ पर धनुष तोड़ा तो सीता देवी ने भगवान को माला पहनाई, तो माला पहनाई तो तुरंत विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अभी दशरथ महाराज को खबर करो और शादी करने का इंतजाम करो, तो दशरथ महाराज को खबर गई, रातों रात घोड़ेसवार पहुँच गए, खुशी खबर दिया उनको, वो तुरंत उन्होंने ब्राह्मण और गाय और धन दौलत और सब कुछ पालकी वलकी सब लेके, डावरी जो भी कुछ शादी का सामान जो भी भेंट वस्तु सब लेके पूरा लवाजमा सैन्य के साथ में निकल गया, फिर वो 7 दिन के बाद पहुँचे ऐसे कहा गया है, आई थिंक सो। तो उसके बाद में विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ, तो जब विवाह संपन्न हुआ तो लोगों ने सोचा कि अभी राम का विवाह हो ही रहा है सीता के साथ में, तो उनकी बहनों का भी विवाह होना चाहिए, तो फिर जनक राजा का एक मित्र था जिसका नाम था समथिंग ध्वज, कहाँ आई डोंट नो, कुशध्वज, ओके कुशध्वज, तो कुशध्वज के 2 कन्याएं थी और जनक महाराज के 2 कन्याएं थी, उर्मिला और सीता, तो उनकी दोनों कन्या को मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, श्रुतकीर्ति और मांडवी, मांडवी ओके। सो फिर विश्वामित्र के निर्देश के अनुसार लक्ष्मण को उर्मिला और शत्रुघ्न और भरत को 2, ऐसा करके उन्होंने वहाँ पर ही तय कर लिया, तुरंत उन्होंने कहा कि जनक महाराज सो हैप्पी ये प्रपोजल सुन के कि एक ही नहीं मेरी चारों कन्याओं का विवाह जो है वो ऐसे महान कुल में हो रहा है, तो फिर उनका विवाह हुआ और विवाह में फिर दशरथ महाराज ने बहुत लोगों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, जनक महाराज ने दिया बहुत, डावरी दिया, उसका पूरा वर्णन दिया है, और फिर वो वशिष्ठ मुनि को लेकर आए थे विवाह के लिए, तो फिर वशिष्ठ मुनि लेकर फिर वो चले, जब वो चले दशरथ की राजा की राज्य की ओर अयोध्या की ओर, तो अचानक बीच में उनको दिखा कि कुछ अशुभ शकुन हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, और मतलब कोई पंछी ऐसा आवाज़ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए उसको, और बाया साइड कुछ लोगों का फड़क रहा है, बाई पलके फड़क रही हैं, और साथ में लेफ्ट में से कुछ हिरन भी जा रहे हैं, तो जब ये अशुभ चिन्ह देखे दशरथ ने तो वशिष्ठ मुनि के पास में गए, गुरुदेव ये सब अशुभ चिन्ह हो रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि यस कुछ संकट आने वाला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिरन भी जा रहे हैं, तो ये संकट कुछ समय के लिए रहने वाला है, फिर वो सब संकट का रूपांतर शुभ में होने वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अपशकुन ओनली, उस अपशकुन जो है उसका परिणाम जो है कुछ ही समय छोटे समय के बाद में अच्छा होने वाला है, तो फिर अचानक वहाँ पर लाल आग क्रोधित हुए परशुराम जी प्रकट हो गए, उन्होंने पुकारा कौन है वो बालक, कौन है वो व्यक्ति, वो तो उद्दंड व्यक्ति, इसने इतना साहस किया है जो शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया है, क्योंकि वो तोड़ दिया उन्होंने ना, पतंजा बांधने का तो नाम था लेकिन वो टूट गया ना पूरा, उसका ध्वनि हो गया। तो बोले तुम्हारा इतना किसका साहस है ये कि शिव धनुष तोड़ने का साहस करे? तो फिर उन्होंने राम राम जो है वो ऐसा नहीं कहा कि मैं ही हूँ, ऐसा नहीं गए, वो हाथ जोड़ के गए कि मैं ही आपका दास। तो उन्होंने कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ा है, तुम अपने आप को बड़ा उद्दंड और बड़ा गर्विष्ठ समझते हो, तुमने विष्णु और शिव के युद्ध में, विष्णु ने एक बार हुंकार किया, हुंकार मसाल, तो वो हुंकार से शिव धनुष शिथिल हो गया, वो धनुष आपको आपके राज्य में दिया गया था इनके, और वो आपने तोड़ा है। मेरे पास विष्णु ने यूज़ किया हुआ धनुष है, एक्टिव, शिथिल नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ में है। अगर तुम वास्तविक वीर हो तो ये लो, संभालो इसको और उठा के दिखाओ मुझे। राम ने फिर एक बार प्रणाम किया और फिर विष्णु धनुष को उठाया, और जैसे ही उन्होंने विष्णु धनुष को उठाया ना, तो उनको देखते ही परशुराम को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सारी शक्ति मुझसे चली जा रही है उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति उन्हें उठा रहा है। मतलब आई एम कमिंग टू चैलेंज यू एंड आई एम रियल फीलिंग कि मेरा सारा शक्ति आपके पास चला जा रहा है, सब मुझे अनुभव हुआ। तो उनको किसी ने पहले ही कहा था कि जिस वक्त तुम्हें लगेगा कि ऐसी व्यक्ति तुम्हारे सामने आई जो तुम्हारी सारी शक्ति उसके पास चली गई, तो वो व्यक्ति विष्णु होंगे और तब आपका अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा। तो साथ ही साथ उनको ये अनुभव हुआ कि सारी शक्ति छीनी जा रही है, और ये भी अनुभव हुआ, ये भी दर्शन हुआ कि प्रभु रामचंद्र के दर्शन में उनको विष्णु का दर्शन हुआ, चतुर्भुज विष्णु का दर्शन हुआ शंख चक्र पद्म गदा के साथ। तुरंत आकर वो चरणों में गिर गए प्रभु रामचंद्र के, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं गर्व से आया था, वो क्रोध से आया था, अहंकार से आया था, लेकिन मैं भी समझ गया हूँ कि आप विष्णु, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, अभी ये लीजिए और आप ही संभालिए इसको, मेरा कार्य समाप्त हो गया, मैं जाता हूँ। इसका मतलब संकट आया था राम के ऊपर, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से चल गया, बहुत आशीर्वाद में चल गया, वो उनका विष्णु धनुष भी प्राप्त हो गया उनको। ऐसे कहते हैं कि तभी परशुराम ने उनको शायद तोणीर भी दिया बाणों से भरा हुआ, तो कब समाप्त नहीं हुआ। तोणीर मतलब जो भाता, भाता अक्षय भाता, जितना निकालेंगे उतना जाते रहेगा उसके। आई थिंक ऐसा भी वरदान दिया उनको कि आपके बाण जो है कभी भी लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आएंगे, इसलिए कहते हैं राम बाण। राम बाण यानी जो कभी भी लौट के नहीं आता, जब तक उसको लक्ष्य को छेद नहीं करता तब तक लौट। उसका और एक विशेषता है राम बाण की कि वो लक्ष्य को भेदता है और वापस आके इधर बैठ जाता है तोणीर में, दैट इज हाउ इट इज, अपना काम पूरा करके वापस कम्स बैक। तो फिर वो फिर पहुँच गए, फिर बड़े धूमधाम से फिर उनको स्वागत किया गया इसमें। सीता जी का जो चरित्र है उसके अंदर जो विशेषता है वो ये है कि जब ये प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था और कई कई ने मंथरा ने सब गड़बड़ कर दिया, तो वो लौट कर आए और सीता देवी को बताया कि अभी ये राजवस्त्र और श्रृंगार करना बंद करो, मैं राजा बनने वाला नहीं हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो उसको बहुत बताते हैं कि जंगल में हिंस्र पशु होते हैं, जंगल में खाना पीना नहीं मिलता है, जंगल में पत्थर कांटे कंकड़ होते हैं, जंगल में राक्षस होते हैं, जंगल में कोई सुविधा नहीं होती है, बहुत डेंजर रहता है, जंगलों के बीच में स्वापदों के बीच में रहना पड़ता है। तो तुमने तो कभी अपने नंगे पैर भी ज़मीन पर रखे नहीं आज तक, पिता के घर में तो हमेशा मखमल पर चली हो तुम, तुम्हारे से वो सब नहीं होगा, तुम बहुत सुकोमल हो, तुमसे वो कष्ट नहीं सहा जाएगा। तो मेरी जो माताएं हैं, मेरी माता कौशल्या जो है बहुत दुखी है ये सब चीज़, वो पिताजी भी बहुत परेशान है, तो तुम दोनों का ख्याल रखना और मैं वनवास का धर्म पूरा करके लौटाऊँगा। तो वो कहती है कि मैंने मेरे पिताजी के राज्य में जब आपसे विवाह किया तो मैंने वहाँ वचन लिया था कि सुख और दुख में आपके साथ रहूँगी। तो सुख तो मैंने आपके साथ भोग लिया कुछ समय के लिए, लेकिन जब दुख का समय आया तो अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे पिताजी का जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुँचेगी, मेरे पिताजी का सम्मान जो है वो नष्ट हो जाएगा कि पुत्री ने वचन तो लिया था लेकिन निभाया नहीं, इसलिए तरह तरह का आर्गूमेंट होती है। प्रभु रामचंद्र फिर विश्व के सामने उसका चरित्र जो है वो प्रस्तुत करते हैं ये डिस्कशन के साथ, और फिर वो चले जाते। फिर लक्ष्मण जी भी बोलते कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी स्टेइंग हियर, और वो अपनी माता को मिलने जाते हैं। तो माता कहती है कि अगर तूने न जाने का निर्णय लिया होता तो तू मुझसे छाप प्राप्त कर लेते। वो कैसी माता है, देखो कैसा पुत्र है और कैसी माता है। वो कहते हैं कि अगर अच्छा किया तुमने कि तुमने निर्णय लिया कि तुम जाने वाले हो, अगर तुम ये कहने आते कि प्रभु राम जा रहे हैं और मतलब पता चलता कि आप नहीं जा रहे हो तो मैं आपको श्राप दे देती। वो कहते हैं कि उसको वो उनको आदेश देती है लक्ष्मण जी को कि वनवास में जब जाओगे कभी सोना नहीं, दिन रात सेवा करना उनकी, दिन में रक्षा करना मतलब सेवा करना, रात को रक्षा करना। वो सब माता ने उनको डिटेल आदेश दिए थे कि मैं तब तक जिंदा रहूँगी, आधे वेट करूँगी आपके लिए, और आपके लिए ये आदेश है कि आपको ऐसे ऐसे जंगल में रहना है। कैसे धन्य माता थी वो। फिर वो लक्ष्मण जी उसके पास गए, उर्मिला के पास। उर्मिला ने उनको ऐसा ही सपोर्ट दिया, ऐसा नहीं कहा कि तुम जा रहे हो मेरे बारे में सोचा नहीं कुछ, मैं अकेले रहूँगी यहाँ पर। ऐसा नहीं कुछ बोला, उन्होंने कहा कि आप हृदय से प्रभु राम की सेवा में जाइए, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सबकी देखभाल करूँगी, यहाँ पर देखभाल सेवा करूँगी और वेट करूँगी आपका। इस तरह से ऐसा सुंदर शुभ आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स प्राप्त करके लक्ष्मण भी निकलते हैं। और सीता देवी देखो कैसा लाइफ में परिवर्तन है, देखो कितना बड़ा परिवर्तन है। हाँ, हम लोग तो कभी 1 करोड़ का बंगला लिया और बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको बेच दिया और फिर वो रेंटल घर पे आ गया, तो ये छोटा मोटा ट्रांजिशन है, ये बड़ा ट्रांजिशन नहीं। ये तो राजा बनने वाला था, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, वो उधर से एकदम जंगल में भिक्षुक के रूप में कंदमूल खाने वाला, नंगे पर चलने वाला। लेकिन इतना बड़ा ट्रांजिशन प्रभु रामचंद्र और सीता देवी क्यों झेल सके इजीली, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने गुरु के चरणों में सेवा अर्पित किया था और गुरु के मार्गदर्शन में उनका परवरिश हुआ था। इसलिए पुराने राजाओं को सबको जंगल में रहकर गुरु जी के रहकर सेवा करनी पड़ती थी। राजा बनने वाला है लेकिन उसको खड़तर जीवन क्या है वो पता होना जरूरी था। तो वो उसकी वजह से प्रभु राम तो प्रभु राम थे लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से ये उनका ट्रेनिंग था, इसके वजह से वो संतों के बीच में रहने की वजह से राजकन्या और राजपुत्र होने पर भी वो जंगल में रह सके एक कृतज्ञ भाव से और एक धन्य भाव से, वो धन्यवाद की भाव से। कितना टेम्पटेशन था उनके लिए एक्चुअली। सब लोग बोल रहे थे कि अरे तुम जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर अयोध्या है ही नहीं, सॉरी तुम जहाँ पर न हो वहीं पर अयोध्या है, ये अयोध्या का क्या मतलब है, यहाँ पर तुम हो इसलिए अयोध्या का मतलब है, इसलिए हमको इस अयोध्या में नहीं रहना है जहाँ पर आप नहीं हो, आप जहाँ जाओगे वहीं पर अयोध्या होगी, इसलिए हम जहाँ वहीं जाएंगे जहाँ पर आप और अयोध्या रहेंगे। कैन यू इमेजिन, ये मैंने एक और एक ही ऐसे पढ़ा हुआ है सेकेंड इंसिडेंट, कि जब राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि मैं नील माधव को खोजने के लिए जा रहा हूँ, सारे नागरिक जो है अपना घर बिस्तरा बांध करो, सबको चलना है मेरे साथ में, वो सब लोग अपना किंगडम घर वार सब छोड़ के पैकिंग करके राजा के साथ निकल पड़े इंद्रदुम्न के साथ। दिस सेकेंड इवेंट आई रेड इक्वल इवेंट, यहाँ पर बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सभी लोग सब कुछ छोड़ के निकल गए तुरंत, तुमको रहना नहीं यहाँ पर, भूखे मरेंगे गंदमूल खाएंगे आपके साथ में, आपके साथ चलेंगे। दाना कहते गए तो तकलीफ हो गया उनको बहुत, फिर वो मान ही नहीं रहते, फिर रात को 3 बजे उठे, सब लोग सो रहे थे तभी उठ के सुमंत को बोल के तुरंत बोट से निकल गए, इतना प्रेम था प्रजा का उनके। तो ऐसे सीता देवी के विषय में उन्हें एक प्रवचन दिया है, आप उसको इस्कॉन डिजायरी में खोल सकते हो, उसमें बहुत और विस्तार में बहुत सारे प्रसंग का वर्णन दिया है। तो सीता देवी, जानवी जानवा देवी और रुक्मिणी देवी, तीन लोगों का साथ में एक प्रवचन दिया था। तो ऐसे ये जो चरित्र जो है ना बहुत ही हमारे लिए हृदय को शुद्ध करने वाले हैं। What answer did you give? Because she was a chaste lady and she wanted to give all the glory to her husband. She could have also burnt Ravan by her eyes only.
That's
No need to lift the bowel also. Tinka. That is all dramatic. That is called as dramatic liberty. There is something called as novel liberty and dramatic liberty. In novel also you can create your own stories to bring up the qualities of the hero and heroine. Or, you know, or in drama you can do some things like that. Like when we write script for our temple dramas, we put our dialogues and our words into it to make the point clear what is there in scriptures. So that particular thing is that it shows that I am a chaste lady. You cannot cross my chastity. Whatever you do, you will be stopped by this. That's how it is, symbolic of chastity. Which demons?
Means wherever Sita is there, even Hanumanji goes finally after the war is over, and that time he asked, throughout this year, all the she demons have troubled you, so just allow me to kill them. That time also Sita says no, should not kill.
So what is the answer?
So Prabhuji couldn't answer him actually. Now what is the purpose of coming then? If she is not alive.
One thing I can understand is that why she didn't kill Ravan, because she wanted to give all the glory to Lord Ram. And also Hanuman said, I will take
I
you.
Will
again he said,
take,
yeah. Again he said, I will not come. Two reasons were there. That I cannot, I was forced by Ravan to,
come.
No, he lifted me and all these things was out of force. I didn't do it out of my desire. But if I sit on you, it will be out of my desire, and that is not a good etiquette to do that. At the same time, I will not come because I want Lord Ram to come, and he will be happy to do his duty and kill Ravan and take me. So it is his what you call right or prerogative or adhikar to do the needful. So Hanuman also could have killed Ravan. He also didn't kill Ravan. Why he didn't kill Ravan? Because he thought that my Lord should kill him. Otherwise, it will become so simple that a servant came and killed him and he went away. But if Lord Ram kills him, then it will be a great glory to him for all the history to come. So, but other times, I don't know why she didn't allow the others to not get killed. I don't know that. Is merciful. That is true. That is definitely true. It's like when demons come in front, then the Vishnu part of Krishna will kill all the demons. The Vishnu part will manifest. Otherwise, the loving Madhurya part will manifest when Radharani is with him. Like that. Hari Bol. To meditate upon all these beautiful pastimes of the Lord is the purpose of pregnancy. Or the duty of a pregnancy period, to absorb yourself in thoughts of the Lord. Hari Bol. So thank you very much. Huh? Hare Krishna.